कुञ्जबिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुञ्जबिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनन्दना व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radha. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadrama. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada ki jai. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jaya maudiraye. Nashtaprayesha bhadreshu नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। तो आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत क्लास की जगह। तो प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ने के लिए जा रहा हो तो आप सब ब्लेसिंग दीजिए आपके सामने पढ़ सकूं। पहले मंगलाचरण कर ले। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितं च। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत का पाठ करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि किस प्रकार प्रभुपाद जी हमारे जीवन में ये प्रकाश लाए हैं कृष्ण भावना का, और उसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। प्रभुपाद जी अगर उस वृद्धावस्था में 70 वर्ष की आयु में नहीं जाते उधर पाश्चात्य देश में प्रचार करने, क्योंकि उनको उनके गुरु महाराज ने आज्ञा कब दी थी, जब वो जवान थे 22 वर्ष की आयु थी उनकी, और उन्होंने फिर भी वो अपने गुरु की आज्ञा को मतलब उस बुजुर्ग अवस्था तक ध्यान में रखा और उसी के ऊपर उनका प्रिपरेशन चल रहा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो सैक्रिफाइस किया है, इसलिए हिजोल ने जयपता गोस्वामी महाराज शायद एक गीत लिखे हैं यदि प्रभुपाद ना है तो वो जो है बहुत मतलब ग्रैटिट्यूड है भक्तों का, कृतज्ञता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक हम प्रभुपाद जी प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे तब तक उनके लीलामृत का महत्व हम नहीं समझेंगे। इसलिए ये हर एकादशी को हम लोग लीलामृत पढ़ते हैं। तो मैं खुद का रियलाइजेशन बता रहा हूँ कि जब भी लीलामृत पढ़ते हैं एकादशी को तो आधे से ज़्यादा भक्त लोग तो सोए रहते हैं, इवन मैं भी उसमें इंक्लूड रहता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों हम प्रभुपाद जी के लीलामृत को इतना मतलब ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं है प्रभुपाद जी के। जब तक वो कृतज्ञता नहीं आएगी तब तक वो लालसा भी नहीं आएगी प्रभुपाद जी के प्रति उनके बारे में श्रवण करने के लिए। इसलिए हमको ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए नविदा भक्ति का अंग भी एक है ना, पहला शुरुआत का श्रवणम कीर्तनम विष्णु, शुरुआत श्रवण से ही होता है। अगर श्रवण ही ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा प्रभुपाद जी के बारे में, कैसे हम कृतज्ञ रहेंगे, कैसे हम इस भक्ति को बहुत गंभीरता से ले पाएंगे। यही तपस्या है। प्रभुपाद जी कल बता रहे थे ना बार बार, इवन 6 पेज का लेक्चर था उसमें प्रभुपाद जी कम से कम 10 से 12 बार उससे भी ज्यादा बोल रहे थे कि यही तपस्या है हमारे। तो थोड़ा बहुत तो तपस्या होना चाहिए भक्तिमय जीवन में, अगर तपस्या नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति में अग्रसर हम नहीं हो सकते। इसलिए ये भागवत श्रवण ही हमारे लिए तपस्या है। ये मैं खुद के लिए कह रहा हूँ, आप सबको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए श्रवण ध्यान से होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नई जगन्नाथपुरी करके ये अध्याय चल रहा है, सैन फ्रांसिस्को को नाम दिया था प्रभुपाद जी ने नई जगन्नाथपुरी। तो इसमें सैन फ्रांसिस्को में उनको एक इमारत खरीदी करना था, मतलब मंदिर के लिए, बहुत पुराना इमारत था, लेकिन जो डीलर था, क्योंकि प्रभुपाद जी को वो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा था तो प्रभुपाद जी देख के चले गए थे, लेकिन डिसाइपल लोग को बोल के गए थे कि आप ये ले लेना, मैं अगली बार जब आऊँगा तब यहाँ पे हमारा मंदिर होना चाहिए। तो मिस्टर प्राइस करके एक डीलर ये था एजेंट, और एक मिस्टर हॉल करके एक हितेशी था, मतलब हितेशी का नाटक कर रहा था वो, और वो एजेंट से मिला हुआ था, और वो दोनों मिलके इस्कॉन के डिवोटीज को ठगने का प्रयास कर रहे थे। तो हम देखेंगे कैसे वो आगे ठगते हैं, प्रभुपाद जी के बार बार मना करने पर भी उनके शिष्य को वो किस प्रकार फंस जाते हैं वहाँ पे। $5,000 उस समय उनके लिए बहुत थे, और उतने ही पैसे थे उनके पास सैन फ्रांसिस्को इस्कॉन के अकाउंट में, वो भी वो सारे उनके वो एजेंट के नाम पे कर देते हैं। तो ये बहुत मतलब भयंकर स्थिति में फंस जाते हैं। तो हम देखेंगे कैसे फंसते हैं, पढ़ के देखते हैं। जय श्री राधा गिरधर जगन्नाथ सुभद्र माय की जय, श्री गौर नेता की जय। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में लड़कों को आदेश था कि जब तक क्रय का संविदा पत्र तैयार न हो जाए वे श्रीमान प्राइस को और अधिक धन न दे। तो प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था जब तक वो एग्रीमेंट तैयार नहीं होता उनको वो अमाउंट जो है किसी भी हद में हाल में देना नहीं है उसको, क्योंकि प्राइस जो है ये उनको प्रभुपाद जी को पहले से उनके ऊपर डाउट था, जो एजेंट था उसके ऊपर। प्रभुपाद मकान अब भी चाहते थे। 4 मार्च को उन्होंने ब्रह्मानंद को लिखा था, मुझे आशा है कि जब मैं अगली बार न्यूयॉर्क आऊँगा तो मैं सीधे नए मकान में प्रवेश करूँगा। और रायराम को उन्होंने 7 मार्च को लिखा था, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि ब्रह्मानंद तुम और अन्य भक्त कृष्ण के निमित्त सभी खतरे लेने के लिए दिव्य साहस रखते हो। तो प्रभुपाद जी को अपने शिष्यों के ऊपर भरोसा भी था, लेकिन फिर भी वो डाउट कर रहे थे, क्योंकि वो मिस्टर प्राइस जो था वो धोखेबाज था, और प्रभुपाद जी को समझ चुके थे प्रभुपाद जी उस बात। तो इसलिए वो कहते, इससे कृष्ण भावनामृत में तुम्हारे सुयश में वृद्धि होगी। ब्रह्मानंद प्रभु को और इनको बता रहे हैं प्रभुपाद जी। किंतु प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य झूठे वादों के कारण धोखे में न पड़े। इस बीच श्रीमान प्राइस भक्तों से कह रहे थे कि वे श्रीमान हॉल को, जो श्रीमान प्राइस के वित्तीय मित्र थे, मतलब फाइनेंस के असिस्ट करने वाले थे वो हॉल, मिस्टर हॉल, वो $5,000 दे दें। ऐसे उन्होंने, जो एजेंट था प्रॉपर्टी का, उसने भक्तों को कहा, सब भक्तों को, प्रभुपाद जी के शिष्य को, कि आप इसको $5,000 दे दीजिए, ये बाकी का पैसा $20,000 डाल के डाउन पेमेंट कर देगा ऐसे मिस्टर हॉल। तो मतलब वो फंसा रहे थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था भक्तों को, उनको ऐसा लग रहा था कि ये हितेशी है हमारे इस्कॉन का और ये मदद करेगा ऐसे। तो जिससे श्रीमान हॉल उसमें $20,000 अपनी जोर ओर से जोड़कर मकान मालिक श्रीमान टेलर को भुगतान कर सके। तो जो ओरिजिनल ओनर था प्रॉपर्टी का वो था मिस्टर टेलर। श्रीमान प्राइस चाहते थे कि ब्रह्मानंद महामहिम प्रभुपाद को यह बात स्पष्ट रूप से लिख दे कि सौदा इसी ढंग से और अविलंब होना चाहिए यदि सचमुच मकान खरीदने की उनकी इच्छा हो। तो वो उनको मतलब कंफ्यूज कर रहा था मिस्टर प्राइस कि इसी प्रकार से सौदा होगा, आपको एजेंट के नाम पे ही पहले पैसा करना पड़ेगा। जबकि प्रभुपाद जी बहुत सारे लेटर्स में उनको पहले कह चुके थे कि एजेंट के नाम पे कभी पैसा मत करना, प्रॉपर्टी का ओनर है उसी के नाम पे पैसा करना। तो इस प्रकार से तो ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को लिखा और उनसे प्रार्थना की कि वे बैंक से लड़कों के जो इस्कॉन के ट्रस्टी थे खाते में $5,000 ट्रांसफर करा दें। तो उन्होंने फिर प्रभुपाद जी को लेटर लिखा और कहा कि $5,000 ट्रांसफर करा दे। तो प्रभुपाद ने अनुमति दे दी और कहा कि चेक पर हस्ताक्षर अध्यक्ष और सचिव करें, क्योंकि ब्रह्मानंद और सत्स्वरूप इस मकान के खरीदने में मुख्य स्तंभ है और पाकशाला विभाग के कीर्तनानंद ने पूरक की भूमिका निभाई है, मतलब हेल्प करते थे वो थोड़ी थोड़ी बातों में। किंतु उन्होंने कहा कि चेक मकान के विक्रेता श्रीमान टेलर के नाम में होना चाहिए, वित्तीय सहायक श्रीमान हॉल के नाम में नहीं। धन और संघ आप लोगों का है। प्रभुपाद ने स्वीकार किया, आप धन जिस तरह चाहे खर्च कर सकते हैं, लेकिन सदा शुभेच्छुक के रूप में परामर्श देना मेरा कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी कितना बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी, ये संघ, ये सब आप ही का है, और जो धन इसमें है ये सब भी आप ही का है, लेकिन इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से खर्च नहीं करेंगे तो ये मेरा कर्तव्य है आपको बताना। क्योंकि प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखे थे, बिकॉज आई एम एवर वेल विशर ऑफ यू ऑल, ऐसे बता रहे। तो तब श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को श्रीमान हॉल से मिलने के लिए आमंत्रित किया और सुझाव दिया कि वे $5,000 के चेक के साथ आए। मार्ग में श्रीमान प्राइस ने बताया कि श्रीमान हॉल मैनहट्टन के कदाचित जायदाद के सबसे बड़े व्यापारी थे, वे करोड़पति थे, उनके पास गगनचुंबी मकान थे, उनके पास जो कुछ था वह सभी बड़ा था, महान था। वो झूठी प्रशंसा कर रहा है उस भक्तों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये चीटिंग नहीं करेगा ऐसे, इतना बड़ा व्यक्ति उसको $5,000 क्या बड़ी बात है। तो वो प्राइस जो है एजेंट, वो उनको कंफ्यूज कर रहा है भक्तों को। तो जब ब्रह्मानंद श्रीमान हॉल के कार्यालय में प्रविष्ट हुए तो उन्हें लगा मानो वह हॉलीवुड चलचित्र का कोई भाग हो। तो उनको थोड़ा रौनक शौनक दिखा रहे थे वो, मतलब वो भक्त लोग ये ना हो जाए कि ये हमें लूट लेंगे ऐसे। तो पहले से उनको इतना ऑपुलेंस दिखा रहे थे कि $5,000 उनको कुछ तुच्छ लगे मतलब। तो तभी उसका कॉन्फ्रेंस हॉल सेकंड एवेन्यू मंदिर कक्ष से 10 गुना बड़ा था। तो जो हॉल था, मिस्टर हॉल जो मदद करने वाला था इस्कॉन को $20,000 ऐड करके डाउन पेमेंट करने में, उसका जो ऑफिस था वो हमारा जो मंदिर था 22nd Avenue का, सैन फ्रांसिस्को का, उसके 10 गुना उसका साइज था, इतना बड़ा हॉल था, ऐसे वो बता रहे हैं। और फिर उसमें अंडाकार मेज के सिरहाने श्रीमान हॉल स्वयं बैठे थे। कमरा धुंधलके से डूबा था, इसमें सफिशियंट लाइट नहीं था, सिर्फ जो मिस्टर हॉल बैठा था उसके ऊपर एक स्पॉट लाइट था, बाकी इसमें ज्यादा लाइट नहीं था उस रूम में। तो केवल श्रीमान हॉल पर प्रकाश पुंज पड़ रहा था और वे टेलीफोनों से घिरे बैठे थे। उनके बीच वार्तालाप शुरू होने पर भी श्रीमान हॉल बीच में कई बार रुके और टेलीफोन उठाकर देश के आर पार के लोगों से बात करने के लिए उठाने लगे बीच बीच में फोन। तो नौजवान श्रीमान हॉल ने ब्रह्मानंद से कहा, हम मकान देने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं, यह एक खूबसूरत मकान है, न्यूयॉर्क शहर में महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है। तब श्रीमान हॉल की एक मित्र लड़की का फोन कैरेबियन की एक नौका से आया, वे कुछ समय तक उससे बात करते रहे। उसके बाद कॉन्फ्रेंस टेबल पर अर्ध प्रकाश में बैठे ब्रह्मानंद और श्रीमान प्राइस की ओर मुड़े। तो वो जो मिस्टर हॉल था, बोलते ना शो ऑफ कर रहा था, दिखावा कर रहा था अपने ऑपुलेंस का, बहुत सारे फोनों के बीच में एक राउंड टेबल के कॉर्नर में वो बैठा था, सिर्फ स्पॉटलाइट उसके ऊपर था, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना हम लोग। तो वो वैसे बैठा हुआ था और धोख जमा रहा था भक्तों के ऊपर कि मैं कितना ऑपुलेंट हूँ, बार बार बीच बीच में फोन करके बात कर रहा था इससे उससे। तो इस प्रकार वो अपना ये दिखा रहा था, मतलब दिखावा कर रहा था अपने ऑपुलेंस का, ऐश्वर्य का। तो श्रीमान हॉल के पास एक बड़ा संविदा पत्र था, मतलब एग्रीमेंट था प्रॉपर्टी का, जिस पर वे ब्रह्मानंद के हस्ताक्षर चाहते थे। तो उनका प्लान ही था कि ब्रह्मानंद प्रभु का हस्ताक्षर उसके ऊपर ले ले। तो ब्रह्मानंद जानता था कि स्वामी जी संविदा पत्र चाहते थे, और ब्रह्मानंद प्रभु भी जानते थे कि प्रभुपाद जी का इच्छा है कि ये अग्रीमेंट हमें मिल जाए और ये प्रॉपर्टी इस्कॉन के नाम हो जाए। और वहाँ वह मौजूद था, वह यह भी जानता था कि यदि वह $5,000 के संविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसके पास अतिरिक्त धन नहीं रह जाएगा और न ही कोई अतिरिक्त आय होगी। तो ब्रह्मानंद प्रभु जानते थे कि उनके पास सिर्फ ये $5,000 अमाउंट है, उसके बाद उनके पास एक पैसा भी नहीं बचेगा और उनके पास कोई मतलब पैसा आने का कोई माध्यम भी नहीं है। तो फिर भी उन्होंने ये रिस्क लेने का हिम्मत कर दिया। तो उसके पास अतिरिक्त आय नहीं था कोई, उसे मालूम था कि वे ये सब बात जानते थे, किंतु स्वामी जी मकान चाहते थे। स्वामी जी ने स्वयं $1,00,000 के मकान देखे थे और उन्हें खरीदने के भी तैयार हो गए थे, यद्यपि उनके पास उतना धन नहीं था। और ब्रह्मानंद हमेशा वही करता था जो स्वामी जी कहते थे। ब्रह्मानंद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस संविदा पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वामी जी और कृष्ण में विश्वास का कार्य होगा। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि अगर मैं इस पे साइन कर दूंगा, भले ही मेरे पास कोई इनकम नहीं, वो प्रभुपाद जी की तरह करने के लिए चले गए, इसलिए वो फंस गए। तो प्रभुपाद जी बाद में बहुत डांटेंगे उन सबको। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि विश्वास दिखाना होगा प्रभुपाद जी के प्रति और कृष्ण के प्रति, जबकि उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था और $5,000 से ज़्यादा कीमत भी नहीं थी। और जो प्रभुपाद जी ने बात भी कहा था उनको कि वो जो एजेंट है या जो हेल्प करने वाला है उसके नाम पर कभी मत करना पैसा, जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसके नाम पर ही करना। लेकिन फिर भी वो फंस गए, उनको लगा कि वो डाउन पेमेंट कर देगा और मदद कर देगा इस्कॉन के लिए। तो इस तरह वह अपने समय के एक बड़े वित्तदाता के कार्यालय में थे। यह विस्मयाकुल था। लखपति उसकी सहायता करने को तैयार थे। श्रीमान प्राइस ब्रह्मानंद की बगल में बैठे थे। श्रीमान हॉल ब्रह्मानंद से कह रहे थे कि सब कुछ ठीक था, हम आपको यह मकान दिला रहे हैं। तो वो बार बार उनको शाश्वती दे रहे थे मिस्टर हॉल, मतलब उनको लग रहा था कि ये डाउट व्यूट ना करे, इसलिए उनको बार बार बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करो, हम आपको मदद करेंगे डाउन पेमेंट करने में, हम आपको ये प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेंगे, बहुत अच्छा मकान है एकदम, मतलब क्या बोलते ना उसको सिटी के, हाँ वो तो है, वो किसी महत्वपूर्ण स्पॉट होता है ना सिटी में, उसको क्या बोलते हैं, हाँ कुछ भी हो छोड़िए। तो इस प्रकार से वो बोलते थे कि ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्पॉट है और मैं आपको खरीदने के लिए मदद करूंगा, इसलिए ब्रह्मानंद प्रभु इसमें फंस गए उनके बहकाव में। तो ब्रह्मानंद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस संविदा पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वामी जी और कृष्ण में विश्वास का कार्य होगा। तो इस तरह से मैनहट्टन का एक महान पुरुष उनकी सहायता कर रहा था, और यद्यपि ब्रह्मानंद के पास धन नहीं था, श्रीमान हॉल मकान को उसके मालिक से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। संविदा पत्र पर शीघ्रतापूर्वक दृष्टि डालते हुए ब्रह्मानंद ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। सौदा हो चुका था और उसने 5,000 का चेक उन्हें दे दिया। जो ही ब्रह्मानंद और श्रीमान प्राइस श्रीमान हॉल के कार्यालय से बाहर आए, श्रीमान प्राइस में स्पष्ट बदलाव आ गया। तो जैसे ही बाहर आए, रंग बदलो गिरगिट की तरह, तुरंत प्राइस जो एजेंट था उसने अपना रंग बदल दिया और वो बातें कहने लगा। आगे सुनते हैं हम लोग। यद्यपि वे अब भी ब्रह्मानंद के मित्र होने का नाटक कर रहे थे, अब उन्होंने कहा, ही आप जानते हैं आप इतने रुपयों की व्यवस्था, वो उनको बता रहे थे कि आप जानते हैं ना कि आपको इतने रुपए की व्यवस्था करनी है। तो अभी वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी पैसे जमा करने का वो भक्तों के ऊपर डाल रहे थे। हालांकि वो पहले कह रहे थे कि वो मिस्टर हॉल उनको ₹20,000 डाल के डाउन पेमेंट करने में मदद करेगा, $20,000। तो अभी क्या बोला कि $20,000 आपको जमा करने हैं इस महीने के अंत में। तो नगर की ऊपरी सड़क पर चलते हुए श्रीमान प्राइस ने हंसते हुए सारा दायित्व ब्रह्मानंद पर डाल दिया। यही बदलाव था। पहले श्रीमान प्राइस कहते थे कि वे और श्रीमान हॉल सब कुछ करेंगे, अब वे कहने लगे कि भक्तों को ही सब कुछ करना था। ब्रह्मानंद ने कानूनी स्थिति के बारे में पूछा। श्रीमान प्राइस ने कहा कि जिम्मेदारी केवल कृष्ण संघ पर थी। तो उन्होंने एग्रीमेंट भी ऐसा सुंदर तरीके से बनाया था, तो उसमें ऐसा लिखा था कि भक्त लोग देंगे $20,000। वो हाल का सिर्फ वो आश्वासन दे रहा था नेता लोगों की तरह कि मैं $20,000 दूंगा, डाउन पेमेंट मैं कर दूंगा 25,000। लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिखा नहीं था वैसे, इसलिए वो फंस गए। तो श्रीमान हॉल के इतना धनाढ्य होने और उनके और श्रीमान हॉल के सहायता करने की तत्परता के बारे में क्या कहना था। श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को विश्वास दिलाया कि वे और श्रीमान हॉल सहायता करना चाहते थे। देखो चेंज हो गया, वे लोग वह सब कुछ कर रहे थे जो वे कर सकते थे। अभी फॉर्मेलिटी वाला बातें कर रहे हैं कि हमने सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, हमारे हाथ में जो था। अभी आप देखिए, आपको जमा करना होगा $20,000। तो इस प्रकार से सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल रहे थे। लेकिन ब्रह्मानंद और अन्य भक्तों को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि वे भुगतान पूर्ण करने के लिए महीने के अंत तक $20,000 की व्यवस्था करें। और यदि वे न कर सके तो श्रीमान प्राइस ने बहुत स्पष्ट कहा, यदि आप शेष धन महीने भर में नहीं अदा करेंगे तो आप जमा किया हुआ धन खो देंगे। हो गया, फंस गए। तो 26 सेकंड एवेन्यू पहुंचने तक ब्रह्मानंद को पूरा अनुभव हो गया कि उसके साथ धोखा किया गया है। वह हताश हो गया। वह अन्य भक्तों के पास गया और जो कुछ हुआ था उन्हें बताया। लेकिन उनका यही कहना था, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सब भक्त लोग जानते थे कि प्रभुपाद जी ने लेटर्स में बार बार कहा था कि ये जो आप पैसा ड्राफ्ट करेंगे वो सिर्फ प्रॉपर्टी के ओनर के नाम पे होना चाहिए था। कम से कम बहुत सारे लेटर्स प्रभुपाद जी उनको भेजे थे, इसलिए वो भक्त लोग भी उनके ऊपर भी ब्लेम करने लगे अभी कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो ब्रह्मानंद ने श्रील प्रभुपाद को सैन फ्रांसिस्को को फोन किया। सॉरी, ये सैन फ्रांसिस्को नहीं, ये न्यूयॉर्क है और प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को फोन किया सैन फ्रांसिस्को में और श्रीमान प्राइस के बारे में उसकी आंखें खुल गई, ऐसे उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया फोन में। इसलिए उसने अपनी भूल निसंकोच स्वीकार की और प्रभुपाद को बताया कि $5,000 वो दे चुका था श्रीमान प्राइस को। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक ही लाइन पूछा, क्या यह सब गया, मतलब ये ₹5,000 आपने उसको दे दिया? तो प्रभुपाद जी ने ऐसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ बोलते ही प्रभुपाद जी ने फोन रख दिया सीधा। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ बोले नहीं प्रभुपाद जी उनको। तो उनको बहुत हर्ट हुआ। एटलीस्ट प्रभुपाद जी डांटते थे, कुछ बोलते थे तो ठीक था, लेकिन कुछ बोले ही नहीं, सीधा फोन रख दिया प्रभुपाद जी ने। तो उसे सुनाई दिया कि प्रभुपाद जी ने टेलीफोन रख दिया है। ब्रह्मानंद अपनी ओर से पूरी व्याख्या देना चाहता था प्रभुपाद जी को, लेकिन स्वामी जी ने बिना कुछ कहे टेलीफोन रख दिया था। ब्रह्मानंद ने रिसीवर हुक पर रख दिया, पर वह बहुत घबराया हुआ था, वो बहुत डर गए। देखिए ना, अगर कोई किसी का स्पिरिचुअल मास्टर नाराज हो जाए, गुरु, तो कितना उसको मतलब पेन होगा। तो इसलिए वो बहुत नाराज हो गए थे और ऊपर से पैसा भी चला गया था। तो अगले दिन ट्रस्टियों ने एक विशेष बैठक की। सभी लड़के प्रभुपाद के आवास के सामने वाले कमरे में यह निर्णय करने बैठे कि क्या करना है। तो गर्ग मुनि ने प्रभुपाद से फिर बात की। उन्होंने बैंक से चेक रुकवा देने की राय दी। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि बैंक से चेक रुकवा दो। तो फिर गर्ग मुनि कहते हैं कि स्वामी जी लोमड़ी की तरह चालाक है, मतलब प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे अपने डीलिंग्स में, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि चेक को रुकवा दो। लेकिन देखा गया कि बैंक में जब फोन करके पूछा गर्ग मुनि प्रभु ने, तो उनको पता चला कि चेक का भुगतान हो चुका है। तो यहाँ पे भी वो फंस गए। तो भक्तों ने श्रीमान गोल्डस्मिथ से राय ली। गोल्डस्मिथ उनके लॉयर थे डिवोटीज के, जो उनके मित्रवत वकील थे। उन्होंने कहा कि केस कानून की दृष्टि से कमजोर लग रहा है। प्राइस और हॉल ने कानूनन यह जिम्मेदारी नहीं ली कि भुगतान देने में भक्तों के असफल होने पर उन्हें कुछ लौटाना था। तो उन्होंने इतना सुंदर एग्रीमेंट बनाया था पूरी तरह फंसाने के लिए कि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि वो अगर बाकी का डाउन पेमेंट जो $20,000 है वो नहीं दे पाए तो $5,000 उनको वापस देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब $5,000 पूरा जाने ही वाला था। तो डॉलर की जमा की हुई राशि वो खो बैठेंगे। धोखे के लिए वे मुकदमा चला सकते थे, लेकिन कोर्ट फीस भारी थी। तो भक्त लोग इतने दुविधा में थे हालांकि वो धोखे के लिए मुकदमा डाल सकते थे, लेकिन कोर्ट फीस इतना भारी था कि वो बहुत महंगा पड़ने वाला था। तब एक एक करके ब्रह्मानंद, सत्स्वरूप, कीर्तनानंद, राय राम और अन्यों ने प्रभुपाद को, प्रभुपाद के पत्रों को पलटना शुरू किया। अभी उनको ये आया, अभी सब लोग प्रभुपाद जी के लेटर्स देख रहे हैं, पीछे जो लेटर्स उन्होंने भेजे थे जब वो डीलिंग चल रहा था तभी, जिसमें उन्होंने धोखे से बचने के लिए सावधान किया था। बार बार प्रभुपाद जी कह रहे थे कि धोखे से बचना, ये लोग मुझे डाउटफुल लग रहे थे। तो उन्होंने अनुभव किया कि प्रभुपाद के आदेशों को न मानना वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो उन्होंने कहा था कि इन व्यवसायियों के वादों पर भरोसा न किया जाए, और उन्होंने कहा था कि चेक केवल मकान मालिक के नाम में काटा जाए, वित्तदाता के नाम में नहीं। तो हॉल जो था, वित्तदाता जो मदद करने वाला था इस्कॉन को, उसके नाम पे नहीं काटने को बोला था प्रभुपाद जी ने। कुछ दिन के अंदर भक्तों के पास उनके गुरु महाराज के अन्य आदेश डाक से पहुंचे। उनमें ताड़नाएं थी, बहुत डांटा था प्रभुपाद जी ने, किंतु उनसे संदेश प्राप्त करना, चाहे उसमें डांट फटकार ही क्यों न हो, इस पीड़ा से अच्छा था कि बिना कुछ कहे ही वे टेलीफोन रख दे। तो भक्तों को भी ये अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी ने एटलीस्ट उनको डांटा तो सही, क्योंकि अगर उनको डांटे भी नहीं मतलब गुरु उनको छोड़ ही दिए, ऐसे ही हो गए ना। तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद जी का डांट को कंपैशन, मतलब उनके अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए तो इस प्रकार अभी आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद जी ने उनको डांटा, सब भक्तों को टेलीफोन रख दे। तो तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया और अब कठिनाई में हो। उन्होंने लड़कों को लिखा, उन्होंने राय राम को लिखा, तुम सभी लड़के मूर्ख हो, मैंने बार बार तुमको आगाह किया था और अंत में आगाह किया था कि हमें चेक नहीं देना है जब तक कि श्रीमान टेलर और श्रीमान हॉल के बीच संविदा पत्र तैयार न हो जाए। संविदा पत्र पर हस्ताक्षर इस तरह हुए जैसे कि विवाह का उत्सव दूल्हे की उपस्थिति के बिना ही हो रहा है। तो कितना अच्छा ये करने प्रभुपाद जी तुलना दे रहे, गलती तो हुई है और अब तुम सब पश्चाताप कर रहे हो। उन्होंने सत्स्वरूप को लिखा, तुमने मुझसे पूछा है कि क्या सैन फ्रांसिस्को की शाखा मकान खरीदने के लिए कुछ रकम दे सकेगी, लेकिन वह मकान कहाँ है, उसका क्रय कहाँ हुआ, अब तक सिर्फ श्रीमान प्राइस और उनके गुट की बातें हुई है जिनमें तुम सब अबोध बालक फंस गए हो। मेरी समझ में नहीं आता कि इस महान भूल में मैं तुम लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। मुझे केवल यही आशा है कि कृष्ण तुम्हारी मदद करेंगे। अभी प्रभुपाद जी ने सारा उत्तरदायित्व कृष्ण पे डाल दिया, अभी आप लोग कृष्ण से प्रार्थना करो। बोलो, भक्तों और उनके वकीलों की राय से भिन्न प्रभुपाद का विचार था कि व्यवसायियों के विरुद्ध उनका केस बहुत मजबूत था। तो हालांकि प्रभुपाद जी ने इतना उनको डांटा, फिर भी एक सांत्वना दी प्रभुपाद जी ने कि आप उनके अगेंस्ट में केस करो, क्योंकि आपका जो मुकदमा है वो बहुत मजबूत है, आपका आपका जो बाजू है उनके अपोज में बहुत मजबूत है, इसलिए आप लड़ो उनके खिलाफ। तो हालांकि मैं वकील नहीं हूँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन यह आम समझ का मामला है, ये कॉमन सेंस है। श्रीमान हॉल ने रकम ली है और मकान खरीदने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता करनी ही चाहिए। यदि वित्तीय सहायता के लिए उनके पास रकम नहीं है तो यह कोरी और स्पष्ट धोखाधड़ी है। उनका कहना था कि अभियुक्तों को आपराधिक न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, उनका षड्यंत्र और धोखाधड़ी स्पष्ट है और इसे सिद्ध किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि जो जिन्होंने फंसाया है उनको छोड़ना नहीं है, उनको न्यायालय में पेश करो, ये सरासर धोखाधड़ी है, सामने हम उनके खिलाफ इस बात को साबित भी कर सकते हैं। तो ऐसा जब उनको आदेश मिला तो ब्रह्मानंद से टेलीफोन पर जो वार्ता हुई उससे ऐसा लगता है कि यह नियोजित धोखाधड़ी का मामला है और तुम्हें इसका सामना साहस के साथ बिना किसी को क्षमा किए हुए करना चाहिए। बोले माफ मत करो किसी को, क्योंकि ये कृष्ण का संपत्ति है, हम में प्रतिकार की भावना नहीं है, हम बदला नहीं लेना चाहते, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण के धन को व्यर्थ में नहीं खोना चाहते। लड़कों से इतनी भयंकर भूल हो चुकी थी कि प्रभुपाद को संदेह हो गया था कि वे प्रवंचकों से निपट सकेंगे कि नहीं, इतना भयंकर भूल उनसे हो चुका था, जबकि प्रभुपाद जी ने बार बार उनको आगाह किया था, वार्निंग दिया था, तो प्रभुपाद जी का भी डाउट हो रहा था वो उनके साथ लड़ भी पाएंगे कि नहीं कोर्ट में। तो लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए, फिर भी प्रभुपाद जी कहे कि आप लोग प्रयास करिए, हमें या मकान लेना है या रकम वापस लेनी है, अन्यथा यह धोखाधड़ी का मामला है, अब तुम लोग जैसा चाहो वैसा करो। फिर सारा जिम्मेदारी प्रभुपाद जी ने भक्तों के ऊपर डाल दिया, आपको जैसा करना है वैसा करो। श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के वकील को लिखा और केस का पूरा इतिहास बताया। उन्होंने एक पत्र वित्तदाता मतलब वो मिस्टर हॉल को लिखा, मकान मालिक मिस्टर टेलर को लिखा और श्रीमान प्राइस को भी लिखा, एजेंट को। उन्होंने हर चीज खोल रखने की धमकी दी थी, तो उन्होंने उनको धमकी दे दिया सबको कि आप ये सारी बात सरा मतलब पूरी पूरी खोल के रख दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसमें वह चीज भी शामिल थी जिसे अकेले वे ही जानते थे, और वह यह थी कि संबंधित वकील की इस धोखाधड़ी में शामिल थे। तो इवन ये बात भक्तों को भी नहीं पता था कि जो गोल्डस्मिथ उनका लॉयर था भक्तों का, वो भी इस बात में शामिल था ये धोखाधड़ी में। ये बात फिर प्रभुपाद जी को पता था, तो उन्होंने ये बात उन लेटर्स में भी रिवील कर दी, बता दी सबको कि मैं जानता हूँ कि ये जो लॉयर है आप लोग का ही बना बनाया मतलब फंसाया हुआ है, उसने भी फंसाया है। तो ये सब रिवील करने के बाद शायद वो डर जाएंगे, ऐसे प्रभुपाद जी सोचे। तो ब्रह्मानंद की समझ में नहीं आ रहा था कि वह यह सब क्या हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि स्वामी जी कुछ नतीजा निकालने जा रहे थे। तो उसको ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद जी कुछ ना कुछ फाइनल कुछ ना कुछ कर ही देंगे। अभी लड़के निश्चय ही मूर्ख थे, लेकिन व्यवसाय भी निश्चय ही प्रवंचक थे, प्रवंचक मतलब फंसाने वाले। और स्वामी जी का दावा था कि वे इसे न्यायालय में साबित कर देंगे, और प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हम इसमें इस बात को साबित कर सकते हैं न्यायालय में। भूल करने वाले शिष्यों को ताड़ना देते और धोखेबाजों पर बुरी तरह क्रुद्ध होते हुए भी श्रील प्रभुपाद अपने मूर्ख बालकों के लिए परम आश्रय थे। तो देखिए श्री प्रभुपाद जी ने डांटा नहीं उनको, उनको आश्रय भी दिया कि आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा, आप कृष्ण से प्रार्थना करो और आप प्रयास करो। प्रयास करने के लिए भी कहा प्रभुपाद जी ने, कृष्ण के ऊपर विश्वास रखने के लिए भी कहा, और ऐसा भी कहा कि कृष्ण का प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं है। तो फिर प्रभुपाद जी उनको सांत्वना देते हुए एक लेटर लिखे। न्यूयॉर्क शाखा के 6 ट्रस्टियों को लिखे गए पत्र में उन्होंने उनके मदास उदास मनों में दिव्य प्रकाश विकीर्ण किया। इस प्रकरण को भूल जाओ, प्रभुपाद जी का लेटर है, इसे पक्की बात मान लो कि जानबूझकर की गई तुम लोगों की मूर्खता के कारण कृष्ण ने यह धन तुम लोगों से ले लिया है। भविष्य में बहुत सावधान रहो और कृष्ण की आज्ञा का पालन करो। यदि तुम कृष्ण की आज्ञा का पालन करोगे तो वे तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता की हर चीज देंगे। प्रसन्न रहो और बिना किसी दुख के हरे कृष्ण का जप करो। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि इतनी बड़ी रकम चली गई इन लोगों के हाथों से, तो बहुत दुखी रहेंगे, जप करने में भी इनका मन नहीं लगता रहेगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है अगर हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो स्पेशली भक्तों के जीवन में पहला प्रभाव जप के ऊपर ही होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि दुखी मत हो और शांति से हरे कृष्ण का जप करो। जैसा कि मैं तुम लोगों को कई बार बता चुका हूँ, मेरे गुरु महाराज कहते थे कि यह संसार सज्जनों के लिए नहीं है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट मेड फॉर जेंटलमैन। तो उनकी उक्ति का समर्थन श्रीमद् भागवत के निम्नांकित श्लोक से होता है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहिः। जिस व्यक्ति में कृष्ण चेतना नहीं है उसमें सद्गुण नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्ति कितना भी सज्जन क्यों न कहा जाता हो और वह चाहे कितना भी शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, वह मानसिक जगत में भटकता रहता है और इसलिए बाह्य शक्ति से प्रभावित होने के कारण वह उत्पाद करने में लीन रहता है। तो वो श्लोक में है ना, मनोरथे नास्ति धावतो बहिर, उसका हमेशा बाहर ही ध्यान रहता है, वो मन की बात सुनता है, इसलिए वो उत्पात ही करेगा, उत्पात में ही लीन रहेगा। दूसरी ओर जो व्यक्ति परमात्मा में अचल विश्वास रखता है उसमें देवताओं के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, अतः तुम लोगों को संसार के तथाकथित सज्जनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वे कितनी भी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत क्यों न हो। कृष्ण चेतना के प्रसार के अभियान में हमें अनगिनत तथाकथित सज्जन मिलेंगे, किंतु हमें उनसे व्यवहार करने में वैसे ही सावधान रहना चाहिए जैसे कि सांप से निपटने में। तो प्रभुपाद जी, कितने भी मतलब कैसे भी सज्जन मिले हमको, सो कॉल्ड सज्जन, जेंटलमैन, लेकिन तथाकथित मतलब सो कॉल्ड, तो उनसे निपटने के समय हमें जैसे हम सांप से डर के एकदम दूर से करते हैं, तो उसी तरह उनसे डील करना है, ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। न्यूयॉर्क के लड़के अब स्वामी जी की वापसी पहले से ही अधिक चाहने लगे थे, तो अभी प्रभुपाद जी का इंतजार कर रहे थे सब लोग न्यूयॉर्क में। यद्यपि मंदिर में अधिकतर बातचीत अब भी उस मकान के बारे में होती थी, पर नियमित कीर्तन और व्याख्यान का कार्यक्रम भी चलता रहता था। दो नए लड़के भी संघ में सम्मिलित हुए थे। यदुरानी ने भगवान विष्णु के कुछ नए चित्र तैयार किए थे जो अब मंदिर में लटक रहे थे। वह उत्सुकता से स्वामी जी के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वे आए और उन चित्रों को देखें। कुछ भक्तों ने मंदिर में व्याख्यान देने के स्थान पर स्वामी जी के लिए एक नए आसन का निर्माण किया था। वे जानते थे कि वे मूर्ख थे, परंतु उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि कृपा करके वे वापस आए। स्वामी जी राजी हो गए। न्यूयॉर्क वापसी के लिए उन्होंने 9 अप्रैल की तिथि निश्चित की। इस बीच सैन फ्रांसिस्को में उन्हें बहुत कुछ करना था। तो प्रभुपाद जी के वापसी का वो अभी सभी भक्त इंतजार करने लगे, और उनको मतलब पश्चाताप था। बहुत सारे भक्त लोग उस मकान के बारे में चर्चा भी कर रहे थे मंदिर में अभी भी, लेकिन फिर भी वो अपने रेगुलर जो एक्टिविटीज है उसको उन्होंने किसी ने भी छोड़ा नहीं, और बहुत अच्छे से कर रहे थे उल्टा। तो इस प्रकार से आज लीलामृत का पाठ यहीं पे रोकते हैं, 9 बज गए। तो अगली बार देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क आएंगे और सब भक्तों से बातें करेंगे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। गौर भक्तवृंद की जय। नेताय गौर प्रेमानंद।